का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं जगदीश व्योम की लिखी कहानी सगुनी का सपना। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में एक स्थान है सूरतगढ़। इप्सा के पापा का ट्रांसफर यहीं के केंद्रीय कृषि फार्म में हुआ है। इप्सा को यहाँ के केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिल गया है। इप्सा कक्षा 5 की छात्रा है। 2-4 दिन तो इप्सा की कक्षा की लड़कियां उससे दूर दूर रही, लेकिन बाद में उससे दोस्ती हो गई। लड़कियों ने ही इप्सा को बताया कि वो अपने टिफिन की सुरक्षा करे, कोई बच्चा खाना चुरा कर खा जाता है। कभी किसी का खाना गायब हो जाता है तो कभी किसी का। बच्चे इस ताक में रहते हैं कि खाना चोर को रंगे हाथों पकड़ा जाए। मैले कुचैले कपड़े पहने एक छोटी सी लड़की विद्यालय के तारों की बाउंड्री के पास घूमती रहती है। बच्चों ने अनुमान लगाया कि यही खाना चुराती होगी। बच्चों ने अपनी कक्षा की खिड़की में से उसे दूर से कक्षा की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए देखा है। कई बार बच्चों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह भाग गई। एक दिन इंटरवल में सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा से बाहर आकर खेल रहे थे। कुछ अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे, तभी तारों की बाउंड्री के पास बने कूड़ेदान की दीवार से सटी बच्चों की भीड़ को ललचाई दृष्टि से देख रही उस लड़की को किसी बच्चे ने देख लिया। 4-5 बच्चे हाथों में पत्थर लेकर उस लड़की की तरफ दौड़े। बच्चों को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखकर वो भागने को हुई, तभी रोहित ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका जो उसके माथे पर लगा। पत्थर लगते ही खून का फवारा छूटा और वो लड़की बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बच्चों की भीड़ जमा हो गई। इप्सा ने जब भीड़ लगते देखी तो वह भी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंच गई। खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई, बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लड़की बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से खून निकलकर बह रहा था। बच्चे खुश हो रहे थे। इप्सा ने जब यह नजारा देखा तो उससे रहा ना गया। जल्दी से वह उस घायल लड़की के पास पहुंच गई। उसने अपने रुमाल से उसका माथा कसकर बांध दिया और अपनी सहेलियों रानी, दक्षा, अंशु और गीता से कहा,
आओ हम सब मिलकर इसे MI रूम में ले चलते हैं।
गीता बोली,
इप्सा ये तो खाना चोर लड़की है, मुश्किल से ही ये पकड़ी गई है और तुम कहती हो कि इसे MI रूम में ले चलो।
गीता, ये लड़की खाना चोर है या नहीं ये बाद में तय होता रहेगा, अभी इसकी जान खतरे में है, इसलिए इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तुम सब इसे ले चलने में मेरी सहायता करो। इसका खून इसी तरह बहता रहा तो ये तो बेचारी मर जाएगी।
बच्चों की भीड़ खून देखकर वहां से खिसकने लगी थी। इप्सा अपनी सहेलियों की सहायता से उस लड़की को डॉक्टर के पास लेकर पहुंची। डॉक्टर ने उसे तुरंत इंजेक्शन दिया, उसके माथे का घाव साफ किया। माथा काफी फट गया था, इसलिए डॉक्टर को 3-4 टांके भी लगाने पड़े। डॉक्टर ने जब तक उसका उपचार किया तब तक इप्सा अपनी सहेलियों के साथ वहीं बैठी रही। डॉक्टर ने इप्सा से कहा, इप्सा तुम इसे शीघ्र मेरे पास न लेकर आती तो इस गरीब लड़की के जीवन को खतरा हो सकता था, पर अब ये बिल्कुल ठीक है, मैंने इसे दवा दे दी है, 1 सप्ताह में इसका घाव ठीक हो जाएगा। इप्सा उस लड़की को देखने रोज अस्पताल के MI रूम में जाती थी। वो लड़की हाथ जोड़कर बार बार कहती,
मैंने कभी खाना नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूं। अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर कक्षा के पास खड़े होकर क्या देखती रहती हो,
और बुलाने पर क्यों भाग जाती हो? सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और क्यों रोज आती रहती हो?
इप्सा ने उस लड़की से पूछा।
दीदी, मेरे बापू बहुत गरीब हैं, पास के गांव में रहते हैं। मुझे कूड़ा कचरा, बोतलें, मोमिया आदि बीनने के लिए यहाँ बापू भेजते हैं। मेरा मन कूड़ा कचरा बीनने में नहीं लगता। मुझे आप सब बहुत अच्छे लगते हो। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी पढ़ूं, आप जैसी ड्रेस पहनूं, बैग लेकर स्कूल आऊं और कुर्सी पर बैठूं। आप सबको पढ़ते खेलते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तारों के पास खड़ी होकर देखती रहती हूँ। मैंने कभी चोरी नहीं की।
लड़की कहते कहते सपनों में खो गई।
फिर तुम भाग क्यों जाती थी?
इप्सा ने पूछा।
मैं डर जाती थी कि आप लोग मुझे पकड़कर मारोगे, इसलिए किसी को अपनी ओर आते देखकर मैं भाग जाती थी। दीदी, इस बार आपने मुझे बचा लिया, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो इप्सा दीदी।
कहते कहते लड़की सुबक सुबक कर रोने लगी।
अरे, तुम तो रोने लगी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है?
इप्सा ने पूछा।
सगुनी, सगुनी है मेरा नाम, लड़की ने कहा। तुम्हें जब स्कूल इतना अच्छा लगता है तो फिर एडमिशन क्यों नहीं करवा लेती हो अपने बापू से कहकर?
इप्सा ने सगुनी से कहा।
मुझे कौन एडमिशन देगा दीदी, हम लोग तो गरीब है ना। मेरे बापू के पास पैसे नहीं है कि किताबें खरीद सकें और कपड़े बनवा सकें।
सगुनी ने उदास मन से कहा।
अच्छा सगुनी, तुम्हारे लिए किताबें मैं ला दूंगी, मेरी सभी किताबें रखी हैं, उनसे तुम पढ़ लेना,
अंशु बोली। दक्षा कहने लगी कि सगुनी के लिए ड्रेस मैं बनवा दूंगी अपने पापा से कहकर। डॉक्टर अजय इन छात्राओं से पहले ही प्रभावित हो चुके थे। इनकी बातें सुनी तो वे अपनी कुर्सी से उठकर लड़कियों के पास आकर खड़े हो गए। इप्सा की पीठ थपथपाते हुए बोले, इप्सा, तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। सगुनी को तुम लोग पढ़ाना चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। जब तुम लोग ड्रेस और किताबों की व्यवस्था कर रही हो तो फिर सगुनी के एडमिशन का और बाकी खर्चों का जिम्मा मैं ले लेता हूँ। डॉक्टर अजय की बात सुनकर लड़कियां खुशी से झूम उठी। सगुनी के चेहरे पर खुशी छा गई। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकेगी। डॉक्टर अजय ने कहा, सगुनी जैसी अनेक बालिकाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, पर अभाव के कारण पढ़ने से वंचित रह जाती हैं, और हम सब बड़े लोग इन्हें उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखते रहते हैं। हम कुत्तों को तो अपनी कारों में घुमाने के लिए ललायत रहते हैं, पर सगुनी जैसी बच्चियों की थोड़ी सी सहायता करने में कतराते हैं। इप्सा, तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने सगुनी के बारे में जो सोचा है उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इप्सा को महसूस हो रहा था कि उसने सचमुच कुछ अच्छा काम किया है। डॉक्टर अजय ने अपनी देखरेख में सगुनी का एडमिशन करवा दिया। सगुनी नई ड्रेस पहनकर स्कूल आई तो उसे लग रहा था कि दुनिया भर की खुशियां उसे मिल गई हैं। स्कूल ड्रेस में सजी धजी सी सगुनी को प्रार्थना सभा में सावधान काम करते देखकर इप्सा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। इप्सा सोच रही थी कि उस जैसे छोटे बच्चे भी किसी सगुनी के सपनों को साकार करने में उसकी सहायता कर सकते हैं। इप्सा के रोम रोम से खुशी झलक रही थी। अभी आप सुन रहे थे जगदीश व्योम की लिखी कहानी सगुनी का सपना। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।